लोकनायक श्रीराम की वैश्विक लोकप्रियता। लोकनायक श्रीराम भारतीय जनमानस के उच्चतम आदर्श हैं। अवतारी सत्ता होने पर भी अवतरण से लेकर लोकलीला संवरण तक उनके जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में मानवीय आदर्श की पराकाष्ठा प्रतिबिंबित होती है। यही वजह है सदियां बीत जाने पर भी श्रीराम की पावन जीवन गाथा विश्व मानव को एक प्रचंड प्रेरक शक्ति के रूप में प्रेरित करती आ रही है। अयोध्या शोध संस्थान के रामायण विश्वकोश ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ रामायण में मौजूद सांस्कृतिक व पुरातात्विक साक्ष्य इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि भारत की सीमा से बाहर नेपाल, लाओस, कम्पुचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, चीन, जापान व कोरिया, सूरीनाम, मॉरिशस, मध्य पूर्व इराक, सीरिया, मिश्र सहित यूरोप, इंग्लैंड, बेल्जियम और मध्य अमेरिका के होंडुरास सहित विश्व के दर्जनों देशों में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम का प्रभाव पूरी प्रामाणिकता के साथ मौजूद है। इन देशों की लोक संस्कृति और साहित्य ग्रंथ, शिलालेख, भित्तिचित्र, सिक्के आदि पुरातात्विक अवशेष श्रीराम की वैश्विक स्वीकार्यता के सूचक हैं। श्रीलंका में वो स्थान ढूंढ लिया गया है जहां रावण की सोने की लंका थी। माना जाता है कि जंगलों के बीच रानागिल की विशाल का पहाड़ी पर रावण की गुफा है जहां उसने तपस्या की थी। रावण के पुष्पक विमान के उतरने के स्थान को भी ढूंढ लिया गया है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर और पर्यटन मंत्रालय ने मिलकर रामायण से जुड़े पुरातात्विक और ऐतिहासिक महत्व के 50 स्थल ढूंढ लिए हैं। श्रीलंका सरकार की योजना भारत की मदद से इन स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की है। जानना दिलचस्प हो कि 90% मुस्लिम आबादी वाले इंडोनेशिया पर राम के जीवन गाथा की गहरी छाप है। रामकथा वहां की सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। जिस तरह भारत में राम की नगर अयोध्या है, वैसे ही इंडोनेशिया में योग्या है। यहां का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। यहां की रामायण काकविन 26 अध्यायों का एक विशाल ग्रंथ है। कहा जाता है कि इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति सुकर्नो के समय में पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल इंडोनेशिया की यात्रा पर था। उस प्रतिनिधिमंडल के लोग इससे हैरान थे कि एक इस्लामी गणतंत्र में रामलीला का मंचन क्यों होता है। उनके सवाल पर सुकर्नो बोले, भले ही इस्लाम हमारा मजहब है पर राम और रामायण हमारी संस्कृति है। इंडोनेशिया की ही तरह लाओस, कम्पुचिया और थाईलैंड के लोक जीवन पर भी राम की गहरी छाप है। लाओस के राजप्रसाद में थाई रामायण रामकियन और लाओ रामायण फ्रलिक फ्रैलाम की कथाएं अंकित हैं। लाओस का उपमु बौद्ध विहार रामकथा चित्रों के लिए विख्यात है। थाईलैंड के राजभवन परिसर स्थित सरकत बुद्ध मंदिर की भित्तियों पर संपूर्ण थाई रामायण रामकियन को चित्रित किया गया है। कम्पुचिया की राजधानी नामपेन में एक बौद्ध संस्थान है जहां खमेर लिपि में 2000 ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध पांडुलिपियां संकलित हैं। इस संकलन में कम्पुचिया की रामायण की प्रति भी है। शोधकर्ताओं के अनुसार थाईलैंड का प्राचीन नाम स्याम था और थाई सम्राट रामातिबोदी ने 1350 में अपनी राजधानी का नाम अयोध्या अयोध्या रखा था। थाईलैंड में लोपबुरी लवपुरी नामक एक प्रांत है। इसके अंतर्गत वांगप्र नामक स्थान के निकट फाली बाली नामक एक गुफा है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर स्थित आधुनिक वियतनाम का प्राचीन नाम चंपा है। थाईवासियों की तरह वहां के लोग भी अपने देश को राम की लीलभूमि मानते हैं। उनकी इस मान्यता की पुष्टि 7वीं शताब्दी के एक शिलालेख से होती है जिसमें वाल्मीकि मंदिर का उल्लेख मिलता है जिसका पुनर्निर्माण प्रकाश धर्म 653-679 नामक सम्राट ने करवाया था। वियतनाम के बोचान नामक स्थान से एक क्षतिग्रस्त शिलालेख भी मिला है जिस पर संस्कृत में लोकस्य गतागतिम उकेरा हुआ है। दूसरी या तीसरी शताब्दी में उत्कीर्ण यह उद्धरण रामायण के अयोध्या कांड के एक श्लोक का अंतिम चरण है। संपूर्ण श्लोक इस प्रकार है, क्रुधमाज्ञाय रामा तु वसिष्ठ प्रत्युवाच जाबालिर्पि जानीते लोकस्यास्यक्तागतिम। वियतनाम के त्राकियु नामक स्थल से प्राप्त एक और शिलालेख यत्र तत्र क्षतिग्रस्त है। इसे भी चंपा के राजा प्रकाश धर्म ने खुदवाया था। इसमें वाल्मीकि का स्पष्ट उल्लेख है, कवेराधस्य महर्षे वाल्मीकि पूजा स्थान न पुनस्त सिकृत। इसी तरह ईरान इराक की सीमा पर स्थित बेलूला में लगभग 4000 वर्ष प्राचीन श्रीराम से संबंधित गुफा चित्र मिले हैं तो वहीं मिश्र में 1500 वर्ष पूर्व राजाओं के नाम तथा कहानियां राम की भांति ही मिलती हैं। इटली में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व रामायण से मिलते जुलते चित्र दीवारों पर मिले हैं। इटली में प्राप्त इन चित्रों में राम लक्ष्मण सीताजी का वन गमन, सीता हरण, लव कुश का घोड़ा पकड़ना, हनुमान जी का संजीवनी लाना आदि प्रमुख हैं। प्राचीन इटली में रावन्ना क्षेत्र मिलता है जो रावण की कथा के समान है। यहाँ कुछ कलाकृतियां प्राप्त हुई हैं जिनमें स्वर्ण मृग मारीच सीताहरण की कथा बिल्कुल समान है। इनमें आकाशमार्ग से उड़ते हुए घोड़ों के साथ चित्र में जटायु का प्रसंग भी मिलता है। मध्य अमेरिका के देश होंडुरास के घने जंगलों में हनुमान जी की प्रतिमा व विशाल शहर मिला है। रामकथा पर आधारित बर्मा की प्राचीनतम गद्य कृति रामवथु है। मलेशिया में रामकथा पर आधारित एक विस्तृत रचना है हिकायत सेरी राम। चीनी रामायण को अनामका जातकम और दशरथ कथानम के नाम से जाना जाता है। इसके अनुसार राजा दशरथ जम्बू द्वीप के सम्राट थे और उनके पहले पुत्र का नाम लोमो राम था। चीनी कथा के अनुसार 7323 ईसा पूर्व राम का जन्म हुआ। जापान के एक लोकप्रिय कथा संग्रह होबसुशु में संक्षिप्त रामकथा संकलित है। यह कथा वस्तुतः चीनी भाषा के अनामका जातकम पर आधारित है। चीन के उत्तर पश्चिम में स्थित मंगोलिया के लोगों को रामकथा की विस्तृत जानकारी है। वहां के लामाओं के निवास स्थल से वानर पूजा की अनेक पुस्तकें और प्रतिमाएं मिली हैं। मंगोलिया में रामकथा से संबद्ध काष्ठचित्र और पांडुलिपियां भी उपलब्ध हुई हैं। तिब्बत में रामकथा को किन्त्सपुन्त्स्पा कहा जाता है। वहां के लोग प्राचीन काल से वाल्मीकि रामायण की मुख्य कथा से सुपरिचित थे। तिब्बती रामायण की 6 प्रतियां तुनहुआंग नामक स्थल से प्राप्त हुई हैं। कोरिया राजवंश के दस्तावेजों के अनुसार अयोध्या की राजकुमारी सुरीरत्ना बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पानी के जहाज से कोरिया गई थी। वहां उनकी मुलाकात तत्कालीन राजा किम सोरो से हुई और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया था। जिस नाव से राजकुमारी कोरिया पहुंची थी वह नाव कोरिया ने 2000 साल बाद भी संभाल कर रखी है। इसके बाद भारत कोरिया की दोस्ती इतनी मजबूत की कोरिया ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर रानी हो का स्मारक बनवाया और हर साल फरवरी मार्च के बीच कोरियन लोग अयोध्या आकर रानी हो को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इराक में एक भित्ति के बारे में कहा जा रहा है कि उसमें भगवान राम की तस्वीर दिख रही है। यह भित्तिचित्र 2000 ईसा पूर्व का बताया जा रहा है। अयोध्या शोध संस्थान के अनुसार हाल ही में इराक गए भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने इसकी पुष्टि की थी। श्री राम के वन गमन पथ के शोधकर्ता प्रसिद्ध इतिहाकार व पुरातत्वशास्त्री डॉक्टर राम अवतार शर्मा ने भी 21 देशों की यात्रा कर उन देशों की श्रीराम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्रस्तुत की हैं। उनके अनुसार राजा दशरथ की तीसरी पत्नी व लक्ष्मण की मां सुमित्रा इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की थी। इसी तरह मध्य जावा की एक नदी का नाम सेरयू है और उसी क्षेत्र के निकट स्थित एक गुफा का नाम किष्किंधा अर्थात किष्किंधा है। श्रीराम के रूसी भक्त गेन्नादी मिर्वाइलोविच पिचनिकोए अपने देश में रामलीला को लोकप्रिय बनाने के लिए चर्चित रहे हैं। इसी तरह रामायण के आध्यात्मिक सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार के लिए मॉरिशस गणराज्य की नेशनल असेंबली द्वारा वर्ष 2001 में एक अधिनियम पारित करना एक बड़ी उपलब्धि है। ट्रिनिडाड टोबैगो तथा फिजी व सूरीनाम छोटे देशों में रामलीला की अत्यंत समृद्ध परंपराएं रोमांचित करती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम को विश्व मंच पर लोकप्रिय बनाने में ईसाई मिशनरी से मानस मनीषी बनने वाले फादर कामिल बुल्के का योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने अपने शोध प्रबंध रामकथा उत्पत्ति और विकास के द्वारा देश दुनिया के सामने श्रीराम की ऐतिहासिकता के 300 से अधिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। 1934-35 में बेल्जियम से भारत आए फादर कामिल बुल्के ने रामकथा की उत्पत्ति और विकास पर कार्य करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पहले डीफिल तथा बाद में 1950 में पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर रामायण को विश्व साहित्य की धरोहर का दर्जा दिलवाया। फादर बुल्के ने लिखा है कि वाल्मीकि के राम कल्पित पात्र नहीं इतिहास पुरुष थे। उन्होंने अपने शोधग्रंथ के उद्धरणों ने पहली बार साबित किया कि रामकथा केवल भारत में नहीं अंतर्राष्ट्रीय कथा है जो वियतनाम से इंडोनेशिया तक फैली हुई है। इस संदर्भ में फादर बुल्के अपने इंडोनेशियाई मित्र हॉलैंड के डॉक्टर होएकास के हवाले से लिखते हैं कि एक दिन दाशून्य होएकास इंडोनेशिया में शाम के वक्त टहल रहे थे, तभी उन्होंने एक मौलाना को रामायण पढ़ते देखा। होएकास ने उनसे पूछा, मौलाना आप तो मुस्लिम हैं, आप रामायण क्यों पढ़ते हैं? उत्तर मिला, और भी अच्छा मनुष्य बनने के लिए, रामकथा के इस विस्तार को फादर बुल्के वाल्मीकि की दिग्विजय, भारतीय संस्कृति की दिग्विजय कहते थे। तुलसी के मानस की विश्व विवेचना। श्रीराम की जीवन गाथा को जन जन तक पहुंचाने वाले गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस की महत्ता और प्रभाव के कारण भारतीय ही नहीं अपितु बड़ी संख्या में विदेशी विद्वान भी तुलसी साहित्य की के प्रति आकर्षित और प्रेरित हुए हैं। इटली के फ्लोरेंस विश्वविद्यालय में पीएल तेसी तोरी ने सन 1911 में तुलसीदास पर पहली पीएचडी उपाधि प्राप्त कर अनेक विद्वानों को चकित कर दिया था। दूसरा शोध कार्य लंदन के जेएन कारपेंटर द्वारा 1918 में किया गया। इस शोध को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रकाशित किया। तुलसी के रचना संसार का अनुशीलन करने वाले पाश्चात्य चिंतकों में अमेरिका के अब्राहम जॉर्ज गियर्सन का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गियर्सन के तुलसी प्रेम का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने 1886 में ऑस्ट्रिया के वियना नगर में आयोजित प्राच्य विद्या विशारदों के अधिवेशन में तुलसी के संबंध में प्रबंध ग्रंथ पढ़ विद्वत सभा में मौजूद साहित्य प्रेमियों को अभिभूत कर दिया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जर्नल में प्रकाशित गियर्सन के लेख द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में तुलसीदास के रचना संसार का विशद विवेचन मिलता है। 1893 में नोट्स ऑन तुलसीदास शीर्षक से उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई। इसके बाद गियर्सन ने 1912 में इंपीरियल गजट के लिए भी तुलसीदास पर लेख लिखा। इसी क्रम में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जर्नल में गियर्सन का क्या तुलसीदास कृत रामचरित मानस रामायण का अनुवाद है शीर्षक से लेख 1913 में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने रामचरित मानस को अनुवाद न मानकर मौलिक ग्रंथ सिद्ध किया। 1921 में प्रकाशित एनसाइक्लोपीडिया ऑफ रिलीजन एंड एथिक्स में भी गियर्सन ने तुलसी संबंधी लेख लिखा। तुलसी पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले दूसरे महत्वपूर्ण विदेशी विद्वान हैं फ्रांस के गार्सा दाताजी। इस फ्रांसीसी विद्वान ने तुलसीदास के रामचरितमानस के सुंदरकांड का फ्रेंच में अनुवाद किया, जो फ्रांस में ही नहीं आसपास के कई देशों में भी खासा लोकप्रिय हुआ। इस क्रम में तीसरा महत्वपूर्ण नाम है इंग्लैंड के विद्वान F.S. ग्राउज का। ग्राउज ने मानस के काव्य तत्व का अनुशीलन करते हुए तुलसी के रामचरितमानस व वाल्मीकि रामायण का तुलनात्मक अध्ययन किया। ग्राउज मानस के पहले विदेशी चिंतक हैं जिन्होंने रामचरितमानस का अंग्रेजी में अनुवाद किया। द रामायण ऑफ तुलसीदास नामक शीर्षक से यह ग्रंथ पृथक पृथक भागों में 1871-1878 के बीच प्रकाशित हुआ। सरकारी प्रेस इलाहाबाद से इस ग्रंथ के प्रथम भाग बालकांड का अनुवाद द चाइल्डहुड शीर्षक से हुआ। तुलसी पर लेखनी चलाने वाले विद्वानों में सुप्रसिद्ध रूसी साहित्यकार अलेक्सेई वरानविकोव 1890-1952 का नाम भी आदर से लिया जाता है। अलेक्सेई ने 10 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित तुलसीकृत रामचरित मानस का रूसी भाषा में छंदोबद्ध अनुवाद किया, जिसे सोवियत संघ की साहित्य अकादमी द्वारा 1948 में प्रकाशित किया गया। इनके अलावा रूसी विद्वान व संगीतकार जीवानी मिखाइलोव व नतालिया गुसोवा ने रामकथा की कथावस्तु को लेकर बच्चों के लिए रंगमंचीय संस्करण तैयार किया। अमेरिकी विद्वान मीसो केवलैंड भी मानस की कथाओं से बेहद प्रभावित थे। उन्होंने रामकथा को बाल साहित्य के रूप में रूपांतरित किया व इसका प्रकाशन एडवेंचर ऑफ रामा शीर्षक से किया।